ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। नामजद वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके वजारती काउंसिल को कल दिलाया जाएगा और राजदारी का हल्फ। हल बर्दारी के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के कामयाब इनकाद के बाद ईसीआई ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली चुनाव के लिए शेड्यूल किया जारी। शंघाई तआवुन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का दो रोजा दौरा पाकिस्तान। वजीर ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा बातचीत को दिया खारिज इम्कान करार। और उर्स गौसुल आजम हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में खसूसी तकारीब का एहतमाम। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर और नामजद वजीर आला उमर अब्दुल्ला को वजीर आला की हैसियत से कल हलफ दिलाने के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। वजीर आला समेत उनके वजारती काउंसिल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल SKICC श्रीनगर में सुबह 11:30 बजे ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाएंगे। इससे पहले LG की तरफ से कल शाम उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत बनाने की दावत दी गई थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अराकीन, CPIM, आम आदमी पार्टी और कई आजाद उम्मीदवारों समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के हिमायत के खतूत मौसूल होने के बाद राजभवन ने उमर अब्दुल्ला को नई सरकार की तश्कील की दावत दे दी है। अपने खत में LG ने उमर अब्दुल्ला के मुतफिका इंतखाब पर खुशी का इजहार किया है। वाजह रहे कि वजीर आला की हैसियत से उमर अब्दुल्ला की ये दूसरी मुद्दत होगी और 2019 में जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35A को खत्म करने नीज साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम दो इलाकों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तकसीम करने के बाद ये पहली मुंतखबा हुकूमत होगी। चुनाव कमीशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की कामयाब तकमील के बाद आज महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात देते हुए कहा कि 288 निशस्तों पर मुश्तमिल महाराष्ट्र असेंबली के लिए चुनाव एक ही मरहले के तहत यानी 20 नवंबर को मुनाकिद किए जाएंगे। वहां अहल वोटरों की कुल तादाद 9,63,00,000 है। महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दत 26 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। आला चुनाव कमिश्नर ने कहा कि 81 निशस्तों पर मुश्तमिल झारखंड असेंबली के लिए चुनाव दो मरहलों यानी 13 नवंबर और 20 नवंबर को मुनाकिद कराए जाएंगे। झारखंड में कुल 2.6 करोड़ राय दहिंदगां अपने वोट का इस्तेमाल करने के अहल होंगे। झारखंड असेंबली की मुद्दत 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव अमल में बढ़ चढ़कर शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत के त्यौहार को तारीखी बना दिया है। राजीव कुमार ने मजीद कहा कि भारत हर एक चुनाव में आला मेयारात कायम कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम के बीच इस बात को दोहराया है कि EVM में किसी भी तरह की छेड़खानी की कोई गुंजाइश नहीं है। नई दिल्ली में जराय अबलाग के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने हालिया इंतखाबात के दौरान वोटिंग अमल में शिरकत करके इन मशीनों से मुतालिक उबारे जा रहे सवालात का जवाब दिया है। हिजब इख्तलाफ की जमातों बशमूल कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के नतायज सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक कई सवालात उठाए थे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर इस्लामाबाद में शंघाई तआवुन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के दो रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर खारजा ने इससे पहले कहा था कि उनका पाकिस्तान का दौरा सिर्फ कसीर साथी प्रोग्राम के लिए है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दो तरफा बातचीत को खारिज इम्कान करार दिया है। ये किसी भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान का 9 वर्षों के दौरान पहला आला सतही दौरा होगा। वाजह रहे कि शंघाई तआवुन तंजीम एक مستقل بین سرکاری بین الاقوامی تنظیم ہے اور اس میں کل 9 ممبر ممالک شامل ہیں، جن میں بھارت، ایران، قزاقستان، چین، کرگز ریپبلک، پاکستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ یہ تنظیم ممبر ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کو بڑھاوا دینے، نیز سیاست، تجارت، اقتصادیات، تحقیق، ٹیکنالوجی اور کلچر جیسے شعبوں کو تقویت بخشنے کے لیے کام کرتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے لیے ایک عالمی سطح کا فریم ورک قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن اسٹینڈرڈائزیشن اسمبلی 2024 کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے G20 کی صدارت کے دوران اس معاملے کو اجاگر کیا تھا اور عالمی اداروں پر زور دیا تھا کہ وہ گلوبل گورننس کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ نریندر مودی نے کہا کہ بھارت پوری دنیا میں ٹیلی کام اور اس سے منسلک ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ پیش رفت والا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد 120 کروڑ ہے، جن میں سے 95 کروڑ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ریئل ٹائم ڈیجیٹل لین دین کرنے والوں میں سے 40% کا تعلق بھارت سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کو کافی حد تک آسان بنایا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا دوسرا 5G مارکیٹ ہے اور اب 6G ٹیکنالوجی کے ضمن میں کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی کئی دیگر حصولیابیوں کا بھی تفصیل سے ذکر کیا۔ اس موقع پر کمیونیکیشن کے مرکزی وزیر جیوتی آدتیہ سندھیا نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت 6G ٹیکنالوجی میں دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران حکومت نے 10 بلین سے زیادہ امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے دیہی علاقوں میں 7 لاکھ کلومیٹر فائبر بچھانے کا کام مکمل کیا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، جو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری اور کلسٹر یونیورسٹی آف جموں کے چانسلر بھی ہیں، نے آج پروفیسر جاوید اقبال اور پروفیسر کے ایس چندر شیکھر کو بالترتیب بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری اور کلسٹر یونیورسٹی آف جموں کے نئے وائس چانسلر کے طور پر تعینات کیا ہے۔ ان کی مدت 3 برس کی رہے گی۔ برصغیر میں آج پیرانی پیر پیر غوث العظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وادی میں عرس کی سب سے بڑی تقریب ان کی زیارت گاہ واقع خانیار میں منعقد ہوئی، جہاں آج دن بھر عقیدت مندوں نے بھاری تعداد میں حاضری دی۔ آستانی غوثیہ پر آج نماز پنجگانہ کے بعد دستگیر صاحب کے موئے پاک کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ اسی طرح کی تقاریب رہباب صاحب، علی قدل دستگیر صاحب، سرائے بالا، پنجورہ شوپیاں، جناب صاحب سورہ، اہم شریف بانڈی پورہ اور دیگر زیارت گاہوں اور بکا جات میں منعقد ہوئیں، جس دوران ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس کا انعقاد کیا گیا اور علماء کرام نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ جموں کشمیر کے وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد عمر عبداللہ کل ہی سبھی انتظامی سیکرٹریوں کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے۔ یہ میٹنگ سول سیکرٹریٹ سری نگر میں کل سپہر 3 بجے ہوگی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ سنوار میں وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت میر سید یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں زائرین کے لیے ہر طرح کے انتظامات مکمل کریں۔ انہوں نے خاص طور سے بجلی، پانی، صفائی ستھرائی اور ٹرانسپورٹ کی دستیابی کی طرف خصوصی توجہ دینے پر زور دیا۔ دری اثنا زیارت گاہ پر آج سے ایام متبرکہ شروع ہوئے۔ اس دوران نماز عصر سے نماز مغرب تک ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجالس آراستہ رہیں گی۔ یوٹی انتظامیہ نے تمام متعلقہ ایجنسیوں اور محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ زمینی سطح پر کشتواڑ ضلع کے مال وڑون میں آگ کی ایک ہولناک واردات سے متاثرہ کنبوں کو ہر ممکن مدد پہنچائے۔ ہمارے جموں کے نمائندے گلشن رینا نے خبر دی ہے کہ کل رات لگ بھگ 70 رہائشی مکانات اور دیگر ڈھانچے آگ کی وجہ سے خاکستر ہو گئے، تاہم اس واردات میں کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ उन्होंने कहा कि यह इलाका दूर उफ्तादा होने की वजह से वहां आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किश्तवाड़ के जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुतासर कुंभों के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। नुकसान का जायजा लेने के लिए टीमें रवाना की गई हैं और आग से मुतासरीन के बाजाबादकारी की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ और गुरेज में पेश आए आग की होलनाक वारदातों के दौरान रिहायशी मकानात और दीगर तामीरी ढांचों को हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मुतासरीन की बाजाबादकारी के लिए फौरी इकदाम उठाएं। उन्होंने मजीद कहा कि मुतासरीन के हक में माकूल मुआवजा वागुजार किया जाना चाहिए। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर दिवांश यादव कल अकलपुर, संग्रामपुर, दुर्गाचक और दीगर मुलहिका इलाकों का दौरा करके वहां लोगों की शिकायत और जारी कामों का जायजा लेंगे। आम लोग अपने इलाकों के मसाइल को उजागर करने के लिए जीएमसी के ग्रीवेंस हेल्पलाइन नंबर 1800180 7207 पर राबिता कायम कर सकते हैं। कौम आज साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके जन्मदिन पर याद कर रही है। वो 1931 में आज ही के दिन रामेश्वरम तमिलनाडु में पैदा हुए थे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2 दहाइयों तक इसरो में अपने फराइज अंजाम दिए। वो भारत के अजीम साइंसदानों में शुमार होते थे। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आला तरीन सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सरफराज किया गया था। वो 2002 में भारत के 11वें सदर बने थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर खराज अकीदत अदा करते हुए दिफा और खला के शोबे में उनके रोल को उजागर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि साबिक सदर का नजरिया हमें विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने में रहनुमाई करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने साबिक सदर को उनके जन्मदिन पर खराज अकीदत अदा करते हुए कौम और समाज के तई उनकी बेलोस खदमात को याद किया है। इस सिलसिले में पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत बीजेपी जम्मू कश्मीर के माइनॉरिटी मोर्चा के सदर सरदार रंजोत सिंह नलवा ने की। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.6 जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।